आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार स्थिति विभक्ति नामक, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 79 पर आ गए। 79 अभी हम स्पर्श देख रहे थे मार्गणाओं में, नरक गति और तिर्यंच गति की बात अपनी चल रही थी। अब यहां पंचेंद्रियों की बात चलेगी। 79 पेज है, अभी हम पढ़ेंगे। सभी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में मिला ना, दूसरा पैराग्राफ, मोहनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जघन्य स्थिति कैसे हो सकती है और कब होगी, किसके होगी? पंचेंद्रिय तिर्यंच, हाँ जय बिन, हाँ अपन कहाँ से आया हुआ जी? एकेंद्रिय में से, एकेंद्रिय में जो हत समुत्पत्ति हुआ है विग्रह के दूसरे समय में, पहले दूसरे समय में दोनों में होते हैं, परंतु स्थिति कम बांध रहा है तो दूसरे समय में और घटेगी। तो उनका स्पर्श है वो क्षेत्र के समान है। क्षेत्र कितना है? लोक का असंख्यात भाग है। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के समान है। इसी प्रकार सभी मनुष्यों के जानना चाहिए, यानी उनका वर्तमान क्षेत्र तो लोक का असंख्यात ही भाग होगा, परंतु मरकर कहीं भी उत्पन्न होंगे अजघन्य वाले तो पूरा लोक कहेंगे। विशेषार्थ, पंचेंद्रिय आदि तिर्यंचों में मोहनीय की जघन्य स्थिति उन्हीं तिर्यंचों के पहले और दूसरे विग्रह में होती है जो एकेंद्रिय पर्याय से आकर उक्त तिर्यंच हुए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो एकेंद्रियों की तो स्थिति बंध तो कम होता ही होता है, रसों में से उनमें चले जाने पर उनके जो ऑलरेडी स्थिति बांध यानी पूर्वबद्ध कर्म है उसमें भी स्थिति कांडक घात होते चले जाते हैं, उसको कहते हैं हत समुत्पत्तिक। हाँ, पंचेंद्रिय आदि तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, ये तीन लेना है। जब पंचेंद्रिय तिर्यंच इतना ही कहा तो उसमें पर्याप्त अपर्याप्त भी आ जाएंगे, फिर भी लब्धि अपर्याप्त का आलाप अलग से भी बताते हैं उनको अलग निकालने के लिए। हाँ आएगी, जब पंचेंद्रिय तिर्यंच इतना ही लेते हैं तो उसमें अपर्याप्त भी है, चारों है। जिसको सामान्य से पंचेंद्रिय तिर्यंच कहा, पंचेंद्रिय तिर्यंच जब कहेंगे तो उसमें पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त भी आ गए, योनिमति भी आ गए और फिर वो लब्धि अपर्याप्त भी आ गए। देखो सामान्य किसको, पहले में पहले भेद कितने हैं तो तीन, पर्याप्त योनिमति और लब्धि अपर्याप्त। और ये सभी जिसमें इंक्लूडेड है ऐसा सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच। तिर्यंचों के भेद करने हैं तो पहले सामान्य तिर्यंच कहेंगे, तो उसमें तो एकोइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक पर्याप्त पर्याप्त सभी आ गए, तो फिर उसके अलग अलग भेद करते हैं। अब यदि इनके क्षेत्र का विचार किया जाए, यानी जो पहले एकेंद्रियों में थे और अभी पंचेंद्रिय में आए हैं, उनके पहले और दूसरे विग्रह में होता है, तो वह लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण प्राप्त होता है। स्पर्शन में भी इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता, स्पर्शन तो अतीत काल पूरा लेते हैं, परंतु उसके भी अपेक्षा से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विशेष अंतर नहीं पड़ता। अतः सब प्रकार के, क्योंकि वो पहले ही समय की बात है ना, अकेले उसमें उत्पन्न होने वाले, जघन्य करके उत्पन्न होने वाले जीव, अतः सब प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंचों में एकेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में आए हैं, तो उपपाद की अपेक्षा आप कहते हैं, तो फिर भी वह भी लोक का असंख्यात भाग ही कहा उन्होंने। हाँ, आपका क्या कहना है, ख्याल में है? सूक्ष्म एकेंद्रिय तो पूरे लोक में है, परंतु एकेंद्रियों में जघन्य से जघन्य स्थिति किसके होती है? बादर एकेंद्रियों की होती है, और बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जो है वो भी लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं, लोक के असंख्यात विभाग में इतना लेना हमें, और वो मरकर इनमें आने वाले हैं, तो वो भी असंख्यात विभाग ही घटित होता है। अतः सब प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जघन्य स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान बतलाया तथा अजघन्य स्थिति वालों का भंग, अब जो जघन्य मिनिमम पॉसिबल उसके अलावा जो इतना अन्य सब है वो अजघन्य कहेंगे। तब ये मरण के समय में अन्य कहीं भी मरकर जा सकते हैं, सूक्ष्म में भी जा सकते हैं, तो उस अपेक्षा यहाँ मारणांतिक में भी घटित कर सकते हैं हम। तो कहते हैं अजघन्य स्थिति वालों का भंग अनुत्कृष्ट के समान बतलाने का कारण यह है कि अजघन्य स्थिति में जघन्य स्थिति को छोड़कर शेष सब स्थितियों का ग्रहण हो जाता है, उत्कृष्ट का भी और अनुत्कृष्ट का भी, इसलिए इनका स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान बन जाता है। अनुत्कृष्ट के समान कितना कहा था, पूरा लोक कहा था ना, देख लेते हैं। हाँ, 77 में जगन है वो, हमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट देखना है, वो 75 पर होगा शायद, या उसके पहले 70 नहीं, पंचेंद्रियों की बात यहाँ पर है, 73 में है, ओग के समान है, सब लोग बताए ना, देखो 73 पेज पर, कहाँ पर 70 पेज में, अच्छा पंचेंद्रिय तिर्यंच वगैरह जो हम अनुत्कृष्ट के समान है ऐसा जो कहा है उसकी बात देख रहे हैं। हाँ, 122 नंबर के पॉइंट में अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और सर्वलोक का स्पर्श किया है, 122 पॉइंट में नीचे से दो लाइन। वही अभी हमने यहाँ सोचा था, 79 पृष्ठ पर हम पढ़े हैं, अनुत्कृष्ट के समान बन जाता है। सब मनुष्यों के भी इसी क्रम से स्पर्शन का कथन करना चाहिए। इसका यह तात्पर्य कि सब प्रकार के मनुष्यों में जघन्य स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान है और अजघन्य स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति वालों के स्पर्श के समान है। कितना होगा? हाँ, वर्तमान में लोक का असंख्यात अभाव और अतीत काल में पूरा लोक। अब देवों में घटित कर रहे हैं, बिन ख्याल में आता है। देवों में मोहनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। देवों में मोहनीय की जघन्य स्थिति, जब सामान्य में देवों की जघन्य स्थिति कहते हैं, हाँ, असंगी में से कहाँ कहाँ आता है? भवनवासी और व्यंतर, ज्योतिषी में नहीं लेना। तो क्षेत्र के समान है, उनका क्षेत्र कितना है? लोक का असंख्यात भाग, स्पर्श भी उतना ही होगा। क्योंकि कौन जीव आ गए हैं? असंगी। असंगी कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में से आएंगे। असंगी पंचेंद्रिय की बात है, देव में जाने वाले पंचेंद्रिय ही होंगे। पूरा असंगी ने एक इंद्रिय नहीं लेना उसमें, तो उनमें से भवनवासी और व्यंतर में आते हैं। तो मध्यलोक से ही, मध्यलोक में ही आए गए या थोड़ा नीचे ऊपर जहाँ उसी लेवल में है ना, मध्यलोक में ही कहेंगे हम उसको। अधोलोक भी कहेंगे, परंतु वो कितना छोटा भाग है, नीचे कितना है? 1,00,000 योजन नीचे तक। तो इसलिए ये कहते हैं उनका स्पर्श भी क्षेत्र के समान लोक का असंख्यात भाग ही होगा। यानी मारणांतिक की भी अपेक्षा अगर लेते हैं, मारणांतिक तो यहाँ घटित नहीं होगा, जघन्य स्थिति वाले वहां जन्मने वाले लेने हैं, असंगी में से मरकर वहां जाने वाले वो जीव लेने। हाँ, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले देवों के स्पर्श के समान है। देवों में जब हम अनुत्कृष्ट देखते हैं, तो हमने वो देखा था, लोक का असंख्यात भाग है, फिर 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग है और 14 भाग में से कुछ कम 9 भाग है। यानी उनके रहने का ठिकाना, विहार करने का और मारणांतिक, ऐसे 3 अलग अलग देखे थे हमने। भवनवासियों से लेकर आरण अच्युत स्वर्ग तक के देवों में, अच्युत कौन सा नंबर है? 16। जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यात भाग। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले उक्त देवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले उक्त देवों के स्पर्श के समान है। थोड़ा निकालना है तो 71 पृष्ठ निकालना। उनका क्षेत्र देख लेते हम, नीचे से 4th line। देखो, आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्प के देवों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श मिला। 71 पृष्ठ नीचे से 4th line। अंत कोड़ा को कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? वो तो रहते वहीं पर है। और कहाँ कहाँ? तो लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्श अनुत्कृष्ट में लिया था। अजगन्य में भी ऐसा है। क्या कहते हैं? अभी हम अच्युत के ऊपर की बात देखेंगे। अच्युत स्वर्ग के ऊपर अपने मूल पृष्ठ पर आना, 79 पर नीचे से 4th line। अच्युत स्वर्ग के ऊपर स्पर्श क्षेत्र के समान है, क्योंकि उनका जो रहने का ठिकाना है वहीं पर वो होते हैं, वो विहार करके और नहीं जाते हैं। इस प्रकार वैकृत मिश्र का योगी, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेदी, अकषायी तो हो गए, अकषायी मन परे ज्ञानी, संयत सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। यानी स्पर्श जो है वो क्षेत्र के समान है, तो कितना है लोक का असंख्यात अभाव, क्योंकि ये जो सारी संयम मन परिज्ञान वगैरह जो देखिए अपगत वेदी, ये तो मनुष्य में ही होंगे और वो भी संयमियों के होंगे, तो इनका क्षेत्र तो लोक का असंख्यात अभाव ही होता है। अब सभी विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवों में स्पर्श पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान है। यहां हम जघन्य की बात कर रहे हैं, तो जघन्य में किसको लेना, एकेंद्रियों में से इनमें उत्पन्न हुए जीव लेना। अब ये भी जीव कहां रहते हैं, कर्मभूमि में रहेंगे। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त रस और त्रस पर्याप्त जीवों में मोहिनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। जब हम पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस त्रस अपर्याप्त कहते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त नहीं पर्याप्त, तो मोहिनी की जघन्य स्थिति विभक्ति कब होगी, क्षपक में सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, वो तो लोक का असंख्यात भाग होगा, स्पर्श भी उतना ही होगा। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले उक्त जीवों का स्पर्श उन्हीं के अनुत्कृष्ट के समान है। अब पंचेंद्रिय और त्रस वगैरह जो हम अनुत्कृष्ट का जो देखते हैं उनका कितना क्षेत्र है, तो अनुत्कृष्ट में तो पहले में पहले लोक का संख्या तो अभाग, और फिर मर कर कहीं जाते हैं उस अपेक्षा से हम। हाँ यहाँ हमने देखी थी ये बात 71 के आगे होगी कहीं, विकलेंद्रिय आदि सब लोक क्षेत्र। हाँ अभी फिर आते हैं अपने 80 पृष्ठ पर। इसी प्रकार चौथी लाइन पांचों मनोयोगी, जैसे हमने पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त में देखा था वैसे पांचों मनोयोगियों में जघन्य कब कहलाएगा, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक वाला। पांचों वचन योगी स्त्रीवेदी, स्त्रीवेदी पुरुषवेदी कहते हैं तब उनके वेद का उदय का अंतिम समय क्षपक वाले का। विभंग ज्ञानी, विभंग ज्ञानी में जघन्य कब हमने देखा था याद है, हाँ वो कल आपको याद आया था ना। हाँ उन्होंने कहा नवेग रवेक वाला जीव सम्यक भी है और वहां पूरे काल तक सम्यक भी रहा और अंत में वो मिथ्यात्व में आ गया, तो उसने तो स्थिति घटाई थी पहले, तो विभंग ज्ञान के साथ उसका जघन्य स्थिति वहां पाई जाएगी। चक्षु दर्शनी ये दसवां गुण स्थान और संगी जीवों के जानना चाहिए, जघन्य वहां ही होती है, अजघन्य तो अन्यत्र होती है। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, अब ये काय की अपेक्षा बात कर रहे हैं, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में मोनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात वे भाग और सर्वलोक का सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में मोनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के संख्यात्व भाग, हम हमेशा वायुकायिकों में लोक का संख्यात्व भाग देखते हैं, और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है, यानी अजगन्य के लिए वो पूरा लोक कहा होना, जगन्य के लिए भी पूरा लोक कहा। देखो ऊपर लिखा था ना, जगन्य और अजगन्य वाले लोक का संख्यात्व भाग और सब लोक का स्पर्श किया है। तो जगन्य वाला लोक का पूरा लोक का कब लेंगे? हाँ, कई पूरा लोक कैसा होगा? पूरा लोक, हाँ बिल्कुल मारना थी, क्योंकि बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त है, वो जघन्य कर रहे हैं, क्योंकि वो ही जघन्य में जघन्य कर सकते हैं। जब एक इंद्रियों में हम जघन्य से जघन्य स्थिति किसके होती है, तो ये बादर पर्याप्तों की ही होती है। तो उन्होंने जघन्य किया है और उस अवस्था में मारणांतिक किया है। लोक का असंख्यात्व भाग तो वर्तमान में रहने के ठिकाना है, और अभी जो सर्वलोक है वो तो मारणांतिक की अपेक्षा लेना, उसमें स्पर्श की अपेक्षा लेना। हाँ, तभी तो घटित होता है। यह लिखा है ना, लोक का असंख्यात्व भाग, वर्तमान उनका रहने का ठिकाना कितना है? वायु कायिक में संख्यात्व, हम अभी पृथ्वी कायिक आदि की बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। जो ये बादर पर्याप्त जीव है उनमें वायु कायिक को अलग निकालना, क्योंकि उनका तो रहने का ठिकाना 5 राज्यों तक है, इसलिए उसको तो संख्यात्व भाग कहेंगे, और बाकी जीवों को कितना कहेंगे? बादर एक केंद्रीय पर्याप्त, उनको लोक का असंख्यात्व भाग। जहां पृथ्वियां है उतना क्षेत्र है, समझो ना, फॉर एग्जाम्पल। वही तो मैं कह रही हूं, जघन्य वाले तो पूरे लोक में कहेंगे, मारणांतिक की अपेक्षा कहेंगे, क्योंकि जघन्य करने वाले वे जीव है और मारणांतिक पूरे लोक में कर सकते हैं, वो अपेक्षा लेनी है। ये निकालना, अनुत्कृष्ट में क्या देखा था? देखो काय मार्गणा में जो 74 पृष्ठ पर ये बादर वायु का एक पर्याप्त की बात नीचे लिखी, उसके बीच में बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त लेना है। अनुत्कृष्ट वहां उनमें नहीं घटित होगा, जघन्य करने वाले हैं। अनुत्कृष्ट जो होता है वो उत्कृष्ट स्थिति के साथ आए हुए, ऐसा लेना है वहां पर, उसमें जघन्य अजघन्य सब उसमें घटित होता है। जघन्य करने वाले, जैसे हम पंचेंद्रियों में देखते हैं उत्कृष्ट करने वाले कौन है, उत्कृष्ट का स्थिति का बंद करने वाले समय में। अब एकेंद्रियों में जघन्य किसके होगा? तो जिनके एक तो हत समुत्पत्ति करते हैं, और फिर जघन्य में जघन्य स्थिति बंद कौन कर सकते हैं? तो बादर पर्याप्त जीव। अपर्याप्त इतनी जघन्य स्थिति नहीं बांध सकते। उत्कृष्ट की बात अलग होती है ना। देखो यहां 75 पृष्ठ पर आपने विशेषार्थ में पढ़ा था इसको, वहां उपपाद की अपेक्षा घटित किया था। ये सब लोग तो यहाँ लिख ही दिया है 74 पृष्ठ पर। अनुत्कृष्ट स्थिति वालों में वहां तो जनरल लिए है, बादर जल का एक वगैरह लिए, पर्याप्त नहीं लिए। उक्त तीन प्रकार के पर्याप्त जीवों में मिला अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन। अनुत्कृष्ट में जगन्य जगन्य सब आ गए, लोक का असंख्यातवा भाग और सब लोक है। अनुत्कृष्ट में तो अजगन्य भी आ गए, तो उस अपेक्षा तो घटित होगा, परंतु यहाँ तो जघन्य की अपेक्षा भी पूरा लोक लिया है। ख्याल में डिफरेंस समझ में? अनुत्कृष्ट में जघन्य अजघन्य दोनों आ गए हैं। अब यहाँ हम जघन्य और अजघन्य देख रहे हैं, तो जघन्य का भी पूरा लोक घटित होता है। वो तो जघन्य करने वाले जीव बादर पर्याप्त ही होते, मिनिमम पॉसिबल करने वाले तो बादर पर्याप्त है, और उनका समुद्घात पूरा लोक में होता है। उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें हमें जघन्य और अजघन्य में डिफरेंशिएट करना है, वहां उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में डिफरेंशिएट करना था। कहां आए हम? 80 पेज पर आए थे ना। और बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में जघन्य और अजघन्य दोनों के लिए लोक का संख्यात्वा भाग, क्योंकि जो बादर पर्याप्त जीव कहाँ रहते हैं? वायु का एक पर्याप्त लोक के संख्यात्व भाग में, वे ही स्वयं अजघन्य और जघन्य दोनों ही कर सकते हैं। अन्यत्र हमने जो कहा था, देखा था, उत्कृष्ट जब घटित किया था तो अन्य पर्याय में से आए हुए थे, तो वो पहले पहले घटित होता था। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, अंत समय में भी जघन्य हो सकता है, क्योंकि करने वाले वे स्वयं है। जब अन्य में से आकर वहां जघन्य हो सकता है ऐसी अपेक्षा आती है, तो पहला समय घटित होता है। ये स्वयं ही स्थिर जघन्य करने वाले हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो उसमें जघन्य का भी और अजघन्य का दोनों का ही पूरा लोक हो जाता है। और लोक का असंख्यात भाग इनमें क्यों किया था? अन्य में उनका अपना अपना रहने का ठिकाना। हाँ, देखो आपका प्रश्न है 74 निकालो। वहां बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में उत्कृष्ट की बात है, वही तो मैंने बताया। उत्कृष्ट कब होता है? यानी वो अन्य पर्याय में से आया हुआ जीव लेना है। कहां से लेना वो वायु का एक? अन्य कौन सी पर्याय में से आएगा? तिरंज और मनुष्य, क्योंकि वायु का एक में देव में से आ नहीं सकता। तो यहाँ कितना होगा उत्कृष्ट? अंतर्मूर्त कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो वो कब होगा? पहले समय में घटित होगा। तो पहले समय में नहीं, उसमें लिमिट आ गई ना, और ये जीवों का रहने का ठिकाना भी असंख्यात्वा भाग है, इसलिए यहाँ असंख्यात्वा लिया। तो भी अंतर्मूर्त, क्योंकि करने वाले पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच है, और यहाँ मरकर यहाँ आएंगे, नरक में जाएंगे तो इमीडिएट जा सकते हैं। नरक में जाएंगे उत्कृष्ट स्थिति बांधकर तो जा सकते हैं, परंतु इन पर्याय में उत्पन्न होने के लिए एक अंतर्मूर्त बीच में चला जाता है। अनुत्कृष्ट वाले तो सब लोग का बताया वहां, क्योंकि सब लोग में से आने वाले भी होंगे उसमें, उपपाद होने वाले। मुझे वो रबर देना जरा। अतीतकालीन उपपाद जी की बात की थी ना वहां पर, अनुत्कृष्टों में, तो अनुत्कृष्ट तो अन्य किसी भी पर्याय में से वहां आने वाले जीव है, हाँ, अब हम आते अपने मूल पृष्ठ पर। इसको फिर पढ़ेंगे हम। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में। वायु का एक को अभी अलग रखा है, उसका क्षेत्र अलग बताने के लिए। वे भी जघन्य करेंगे। मोनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने दोनों के लिए यही बात है। पहले हम जघन्य को अलग, अजघन्य को अलग घटित करते थे, ऐसा यहाँ नहीं लेना है। लोक के असंख्यातवे भाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया। वर्तमान में असंख्यातवा भाग है और मारणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक, जघन्य के लिए भी और अजघन्य के लिए भी। कहाँ लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि जघन्य किए हुए अवस्था में मारणांतिक करेंगे वो। यदि ऐसा ही अगर लेना है तो बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में मुनि की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवन ने लोक के संख्यात्वा भाग और सब लोक का क्षेत्र, वहां भी आपको ऐसा ही घटित करना पड़े, वो नहीं होता है। वे स्वयं जघन्य करने वाले हैं, वही तो इतने बार इतनी जो चर्चा हुई उसी के तो बारे में हुई है। अतीतकालीन दोनों का अतीतकालीन स्पर्श सब लोक है। ये दो बार जब आता है तो वर्तमान और अतीतकाल की अपेक्षा है। ये जघन्य और अजघन्य के लिए क्रम है ही नहीं है। ये अभी हम इतने सारे पेजेस निकाल निकाल कर देखे हैं, उसी के चर्चा में गए। ख्याल में आता है ना? आप क्या कहते हैं अरविंद भाई? कुछ नहीं कहते? देखो, बादर वायु का एक पर्याप्त जीव जघन्य कब करते हैं? बोलो, जघन्य कर कब करते हैं? बादर वायु का एक जीव जघन्य कब करते हैं? तो वो पूरे लाइफ में कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, कभी भी कर सकता है। हत समुत्पत्ति और जघन्य का बंध लगातार करे तो कितना टाइम करेगा? अंतर्मूर्त तो करेगा ही करेगा। जैसे उत्कृष्ट का एक समय के लिए होता है, ऐसा इसका नहीं है। तो जितने अंतर्मूर्त काल ये जघन्य का स्थिति बंध कर रहा है और स्थिति भी जघन्य ही हुई है, उस काल में वो मारणांतिक कर सकता है कि नहीं कर सकता? कहाँ कर सकेगा? पूरे लोक में कहीं भी। तो जघन्य में पूरा लोक घटित हो रहा है, वैसे अजघन्य में तो होने का कोई सवाल नहीं, वो तो हम समझ सकते हैं अजघन्य में। परंतु वो स्वयं जघन्य करने वाले है, इस अपेक्षा से इसको लेना है। वर्तमान में तो लोक जघन्य के लिए वर्तमान लोक का संख्यात्वा भाग, अजघन्य के लिए भी वर्तमान लोक का संख्यात्वा भाग वर्तमान, और अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक जघन्य के लिए भी और अजघन्य के लिए भी। आप फिर घोटाला कर रहे? हाँ हाँ, यानी वो जघन्य अजघन्य के लिए अनुक्रम नहीं है, वो वर्तमान और अतीत की अपेक्षा अनुक्रम रखा है, जो हर समय हम रखते आए अभी तक। ख्याल में आया अभी? ऐसा ही जघन्य के लिए भी वर्तमान क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग, संख्यात्वा वायु का एक के लिए लोक का संख्यात्वा भाग, वायु का एक पर्याप्तों की बात चल रही, बादर वायु का एक पर्याप्त। वर्तमान का क्षेत्र जघन्य का कितना है? लोक का संख्यात्वा भाग। और अतीत काल की अपेक्षा कितना है? जघन्य का पूरा लोक, क्योंकि करने वाले वे स्वयं है ना। ऐसा अजघन्य के लिए भी वही है। अब नीचे वैक्रिय कायोगी जीवों में मोनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श उनके क्षेत्र के समान है, लोक का असंख्यात्वा भाग है। वैक्रिय कायोग में जघन्य किसके होती है? हाँ, दो बार उपशम श्रेणी है, क्षायिक समय तो प्राप्त किया है, सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ है, और अंतिम समय में, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले उक्त जीवों का स्पर्श, वैक्रिय कायोगी वालों का स्पर्श उनके अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के स्पर्श के समान है। कितना होगा? वैक्रिय कायोगी है और अनुत्कृष्ट है तो रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात अभाग। हाँ, 8/14 विहार की अपेक्षा त्रसदाली के 14 भाग में से 8 भाग, और अजघन्य है ना उनकी। हाँ, वैक्रिक कायोगी में नीचे वाले भी लेना है, नारकी भी लेना है, तो 14 भाग में से 13 भाग। क्यों? उसका ख्याल में नीचे सातवें नरक से भी बीच में आएंगे, और ये जो ऊपर पृथ्वी में मानांतिक करेंगे तो 7 राज्य ऊपर। इसी प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, इसी प्रकार यानी ऐसा ही कथन, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, अवधि दर्शनी, पीत आदि तीन लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। वो लोक का असंख्यात भाग वगैरह जो होता है वो वहां उनका जानना चाहिए। हमने देखा था ना अनुत्कृष्ट में, देखो वैक्रिक का योग निकालो। 75 पृष्ठ पर ये 129 नंबर का पॉइंट देखो, उसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कौन, उत्कृष्ट कौन हो गए तो वो उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले हैं और उनके अलावा बाकी अनुत्कृष्ट हो गए। उनका कितना है तो लोक का असंख्यात भाग, ये रहने का ठिकाना, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग ये विहार की अपेक्षा, और कुछ कम 13 भाग क्षेत्र का स्पर्श है, ये तो नरक और स्वर्ग दोनों की अपेक्षा लिए। अभी पांचवी लाइन में अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने किसमें, वो कार्मण का युग में गठित किया। अच्छा, आगे कार्मण का युग में गठित किया जो आभिनिबोधिक वगैरह ज्ञानियों में उन्होंने लोक का असंख्यात भाग ही गठित किया था और कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र, जो अभी हमने सारी मार्गणाएं देखी थी उसमें भी ऐसा ही घटित होगा। हाँ, पीत आदि तीन लेशा, हाँ यहाँ शुक्ल लेशा वाला लिया है। मैं मेरा पेज कहाँ गया, एक मिनट, 80 पर। हाँ, वैक्रिक का योगी, अवधि दर्शनी तक हमने देखा, पीत आदि तीन लेशा वाले, क्योंकि वैक्रिक का योगियों का जैसा कथन है तो देवों में पीत आदि तीन लेशा वाले घटित होते हैं, तो वहां उनकी अपेक्षा से बात करना। ये लिस्ट पढ़ी ना हमने अभी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक को करना, उपशम सम्यक दृष्टि। देखो उपशम सम्यक दृष्टि में भी वो घटित करते विहार वाला देवों में, हमने किया पहले देखा था 8/14। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ। स्पर्श की बात आती है तो अटपटा होता है ना। अब कालानुगम, तो पहले हमने काल देखा था ना, सुना, बोलो ये फिर दोबारा काल क्यों ले रहे? आप क्या कहते हैं? हाँ सुना आपने, हाँ बोल दो। अभी पहले एक जीव की अपेक्षा था, अभी हम यहाँ सभी भंग जो चल रहे हैं, ये भंग नहीं, सभी अभी अनुयोग, वो नाना जीवों की अपेक्षा चल रहे। पहले हमने नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय देखे थे, याद है ना, भागा भाग दे गए, परिमाण देखा, क्षेत्र देखा, स्पर्श देखा, अभी काल देख रहे, नाना जीवों की अपेक्षा काल। एक जीव की अपेक्षा काल में क्या लिया था? काल किसको कहा था? उत्कृष्ट का काल कितना होगा एक जीव की अपेक्षा? ओघ में 70 कोड़ा कोड़ी सा गया। हाँ, मुझे वही प्रश्न अपेक्षित था। उत्तर क्या ये सही है? वो अद्धा छेद बताया आपने। काल यानी लगातार उत्कृष्ट रहने का, उसको काल कहते हैं। तो एक समय होगा और लगातार रहने का फिर अधिक से अधिक अंतर्मुर्त, एक जीव की अपेक्षा। अब यहाँ नाना जीव है, यानी विश्व में जितने जीव है विभक्ति वाले, उसमें से उत्कृष्ट विभक्ति वाले लगातार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमेशा रहेंगे कि रहेंगे, कि उसमें अंतर पड़ेगा, ये बात यहाँ बताएंगे। अंतर कितना है वो तो अंतर में आएगा, परंतु जब अंतर पड़ता है तो काल समाप्त होता है। तो काल कम से कम कितने समय और अधिक से अधिक कितने समय, नाना जीवों की अपेक्षा अभी बात करनी है। जैसे हम गुणस्थानों के ऊपर दृष्टांत लेके समझेंगे, सासाधन गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा काल कितना है? एक समय से लेकर 6 अवली तक, जघन्य और उत्कृष्ट। और नाना जीवों की अपेक्षा काल कितना है, याद है? एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक लगातार कोई ना कोई जीव सासाधन में आएगा। ऐसे यहाँ अभी हम नाना जीवों की अपेक्षा हमको काल घटित करना है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। किसको कहना ये पहले ख्याल में आएगी बात, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले जो हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर देखा या कहीं कहीं एक अंतर्मुहूर्त, तो उसमें अद्धा छेद कहना उसको, उत्कृष्ट स्थिति का काल। उत्कृष्ट स्थिति काल भी मत कहो, उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। उसका एक जीव की अपेक्षा काल कितना है तो एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त। अब यह हम नाना जीवों की अपेक्षा देख रहे हैं। हमने पहले देखा था ऐसा हो सकता है कि एक भी जीव उत्कृष्ट वाला न हो, हमने भंगों में देखा था नाना जीवों की अपेक्षा भंग, इसका अर्थ उसका काल लिमिटेड होगा। ये भंग निकालो, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय में हमने देखे थे, हमने 3 और 3 6 भंग उसमें लगाए थे। बाघ अनुभव के भी हम भंग विषय इसमें 54 से शुरू हुआ था। हाँ, 56 में तो वो मार्ग अंतर सांतर मार्गणाओं में देखा था हमने। यह हम 55 पेज के विशेषार्थ में देखा था, परंतु मूल में देखेंगे ना, 54 पृष्ठ पर है। उसमें 5वीं लाइन देखो, ओघ की अपेक्षा पहले बात कर रहे हैं अभी हम अभी मार्गणाओं में जाएंगे नहीं। कदाचित सभी जीव मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है, यानी एक भी जीव उत्कृष्ट स्थिति वाला नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? यानी यहाँ सदाकाल तो नहीं होगा, ये बात होती है। अब कितना हो सकता है वो अभी हम पढ़ेंगे। अब अपने मूल पृष्ठ पर आते हैं, हम 80 नंबर का पृष्ठ है। कालानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। नाना जीवों की अपेक्षा लगातार जघन्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो कितना काल होगा? और उत्कृष्ट लगातार होगा कि नहीं होगा? होगा तो कितना काल? तो जघन्य हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? ओ की अपेक्षा शपक वाला नहीं रहेगा, पर तो एकेंद्रीय वाला वो जघन्य वो रहेगा, मार्गणाओं में जघन्य रहेगा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएंगे। उनमें से उत्कृष्ट कालानुगम का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जघन्य सत्वकाल एक समय, काल घटाना है ना, अंतर की बात आएगी तब अंतर की सोचेंगे, यहाँ एक समय के लिए है, बाद में नहीं है, ऐसा हो सकता है। उसको काल कहेंगे। और उत्कृष्ट सत्व काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं, जैसे हमने अभी अभी उदाहरण के तौर पर सासाधन की बात की थी, नाना जीवों की अपेक्षा, ऐसे यहां ये उत्कृष्ट जने कितनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति बांधने वाले जीव कुछ है तो कितने काल तक, कम से कम एक समय तक तो रहेगी, और लगातार अधिक से अधिक कितने समय तक रहेंगे, लगातार लगातार पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्व काल कितना है, अब ये तो आसान है, सर्व काल है। उत्कृष्ट कभी कभी होगा पर अनुत्कृष्ट तो हमेशा होगा ही, तो ये सर्व काल है। इसी प्रकार सभी नारकी अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों का जघन्य सत्वकाल, या जघन्य उत्कृष्ट होता ही नहीं इसलिए सत्वकाल कहा। देखो ऊपर क्या लिखा, उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों का सत्वकाल, इसका अर्थ लगातार उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति अनेक जीवों में रहे ऐसा काल, तो एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव तो हमेशा ही होंगे ही होंगे, तो उनका सदा काल है, उसमें जगन्य उत्कृष्ट नहीं लगाएंगे। सादी शांत काल होता है उसी में जगन्य उत्कृष्ट लगा सकते हैं। ख्याल में आते हैं बात? हाँ। इसी प्रकार कौन सा उत्कृष्ट का एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात विभाग वाला, कहां कहां ऐसा ही कथन घटित होगा, सभी नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, यानी जहां जहां उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो सकता है ऐसी बातें लिए, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पंचेंद्रिय योनिमति तिर्यंच, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, क्योंकि वहीं तक उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो सकता है। ऊपर हमने अंत कोड़ा कोड़ी देखा था, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, ये मनुष्यों को क्यों छोड़ा बीच में भाई, ऊपर लिखे क्या मनुष्य, अच्छा वो उनकी जो अलग अलग होगा। हाँ उनकी लिस्ट अलग होगी। हाँ अभी हम पढ़ रहे हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पंचेंद्रिय योनिमति, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार, इसको पढ़ा था, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैक्रियक काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि पांच लेशा वाले, क्योंकि शुक्ल लेशा वालों में हमने देखा था अधिक से अधिक अंत कोड़ा कोड़ी का ही होता है, भव्य और अभव्य दोनों, मिथ्या दृष्टि, संज्ञ और आहारक जीवों के कहना चाहिए। यहाँ जो उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण कहा नाना जीवों की अपेक्षा, ये इन मार्गणाओं में भी घटित होता है। नाना जीव लगातार वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट वाले रहने चाहिए उसमें। अब आगे पढ़ते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मुनि की उत्कृष्ट विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है, जघन्य सत्वकाल एक समय, और उत्कृष्ट सत्वकाल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में जब उत्कृष्ट कब कहलाएगा, पर्याप्तों में बांधकर आया हुआ जीव तो अंतर्मूर्त कम होता है उसका, और वो कब घटित होगा, पहले समय में। इसका अर्थ है लगातार कोई ना कोई जीव इन पर्यायों में उत्पन्न होता रहे, उत्पन्न होने का समय लगातार इन पर्यायों में तो हो गए ही जीव, अनादि अनंत काल में इनमें कोई जीव नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु एक एक समय में कोई ना कोई जीव उत्पन्न होगा, ऐसा कब तक हो सकता है? अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग काल तक, इसको उपक्रमण काल भी कहते हैं, लगातार जन्मने का काल, इसमें आने का काल, उसके बाद अंतर पड़ेगा, फिर उसमें जीव जन्मेंगे, तो वो आवली का असंख्यात भाग होता है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्व काल सर्वदा है, क्योंकि इसमें हमेशा ही जीव पाए जाएंगे, ये सांतर मार्गणा नहीं है। सांतर मार्गणा में फिर हम कहेंगे उसका लिमिट कहेंगे, उसके सत्व काल के सदाकाल वहां नहीं होंगे, उसमें भी अंतर पड़ेगा। ख्याल में आती है बात? यानी ये मार्गणा तो निरंतर है, परंतु उसमें उत्कृष्ट स्थिति कब घटित होती है? पंचेंद्रिय में से उत्कृष्ट स्थिति के साथ इसमें आया है, तो वो पहले ही समय में घटित होता है। तो लगातार इसके पहले समय में, पहले समय में अन्य गति में से यहाँ आया हुआ जीव लेना, अन्य में यानी तिर्यंश मनुष्यों में से, तो आवली के असंख्यातवे भाग काल तक ही ऐसा बन सकता है कि कोई ना कोई जीव इन पर्यायों में जन्म ले रहा है। उत्कृष्ट काल, लगातार रहने का काल, हो सकता है एक समय के लिए आया, दूसरे समय में कोई जीव नहीं जन्मा, फिर तीसरे समय में कोई जन्मा, फिर भी लगातार अगर कोई ना कोई आता रहे तो आवली का असंख्यातवा भाग। आवली में कितने समय होते हैं? जगन्य युक्ता संख्यात, उसका असंख्यातवा भाग भी असंख्यात समयों का है, तो असंख्यात समयों तक कोई ना कोई जीव वहां जन्मेगा। इसी प्रकार सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, हमने देखा था एक इंद्रियों में उत्कृष्ट स्थिति किसके होती है? तो देवों में से मरकर एक समय में आने वाले, तो वो तो लगातार हर समय कोई जीव मरकर वही नहीं आएगा, उसमें भी गैप पड़ेगा। सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस अपर्याप्त, औदारिक मिश्र काय योगी, ये जो मार्गणाएं हैं उनकी अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति समझना। कार्मण काय योगी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, इसलिए अपनी अपनी कही क्योंकि जो स्थिति औदारिक मिश्र में होगी या अभी हम एकेंद्रियों में होगी उतने ही अभिनिबोधिक ज्ञानी में नहीं होगी। हाँ, तो उसमें अपनी अपनी हर एक की अलग अलग। अभिनिबोधिक ज्ञानी में हमने कैसे घटित किया था उत्कृष्ट स्थिति? हाँ, मिथ्यात्व अवस्था में उत्कृष्ट बंद किया है और अंतर्मूर्त में वेदक समय तो प्राप्त किया है। संयता संयत, उसकी भी अपने योग्य जो कुछ अंत कोड़ा कोड़ी होगी। अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। सामान्य कनो, सामान्य हुआ सामान्य मनुष्य, ऊपर मनुष्यों को छोड़ा था ना, क्योंकि वहां ऐसी लिस्ट थी कि जो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक लगातार होवे। अब यहां सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, उत्कृष्ट की बात चल रही है, यानी जो स्वयं बांध रहे उस काल की बात लेना है। इन तीन प्रकार के मनुष्यों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्व काल कितना है? तो जघन्य एक समय, यानी एक समय के लिए कोई ना कोई मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, क्योंकि हमने देखा था मोनी की जगह उत्कृष्ट स्थिति बंध कोई कोई जीव बांधेगा तो एक समय के लिए बांधेगा, फिर अनुत्कृष्ट करेगा, और हो सकता है लगातार अधिक से अधिक लंबा काल तक बांधेगा तो अंतर्मूर्त तक बांधेगा। आप कहेंगे फिर दूसरा कोई मनुष्य उसमें बांधेगा कि नहीं बांधेगा? तो बांधेंगे तो कितने बांधेंगे? संख्याति बांधेंगे। संख्या जीवों का अपना अपना अंतर्मूर्त होगा तो भी वो मिलकर अंतर्मूर्त ही होगा। ये नाना जीवों की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त कह रहे हैं ना, इसलिए ऊपर जो लिस्ट देखी थी पल्ले के असंख्यात भाग काल तक लगातार कोई ना कोई बांधता है, हर समय की बात है। तो यहाँ अनेक जीव लगातार भी बांधेंगे, नाना जीवों की अपेक्षा भी अगर लगातार देखेंगे तो अंतर मुहूर्त तक होगा, 70 कोड़ा कोड़ी का बंध। एक समय कम होगा तो भी हम उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है, वो तो हमेशा रहेगी, क्योंकि हम पर्याप्त मनुष्य मनुष्यों की अपेक्षा ले, सामान्य मनुष्यों में भी पर्याप्त होते हैं तो वो जीव हमेशा होते ही होते हैं, तो उनके तो अनुत्कृष्ट तो हमेशा ही रहेगी, उत्कृष्ट कभी कभी होगा किसी का। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में, अभी लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य ये कैसी मार्गणा है, ये मार्गणा ही सांतर है। तो इसमें उत्कृष्ट कब होता है, पर्याप्त मनुष्य या तिर्यंच उत्कृष्ट स्थिति बांधकर अंतर मूर्त में इनमें उत्पन्न हुआ है, तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है, तो जघन्य एक समय, और उत्कृष्ट आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण, लगातार कोई उसमें जन्मे तो, जैसे अभी हम पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तों में देखा था वैसे, परंतु वहां अनुत्कृष्ट सदाकाल कहा था, अभी यहां के अनुत्कृष्ट की बात अलग होगी। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है, जघन्य एक समय कम खुद्दा भव ग्रहण, क्यों, इस मार्गणा में रहने का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण है, और उसमें एक समय के लिए उत्कृष्ट घटित करेंगे हम, जो कोई जीव यहां आए हैं तो एक समय उत्कृष्ट के साथ, और यहां रहने का इस मार्गणा का काल कितना है, तो अंतर्मूर्त है, इसलिए अंतर्मूर्त लिया, और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यानी कोई जीव इसमें जन्मता है तो कम से कम अंतर्मूर्त तक तो रहेगा ही ना, उसमें खुद्दा भव ग्रहण वाला उसकी जो लब्धि अपर्याप्तक का काल है उतना, और कोई ना कोई लगातार आए तो पल्ले के असंख्यात विभाग। आनत कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है, जघन्य एक समय, ये नाना जीवों की अपेक्षा चल रही बात, एक समय कब होता है, कोई जीव वहां उत्कृष्ट के साथ जन्मा है, जन्म का पहला समय, क्योंकि बाद में तो एक एक स्थिति घटती चली जाती है, एक एक निश्चय घटता चला जाता है, तो कोई एक जीव जन्मा है, दूसरे समय में कोई नहीं आया है, तो जघन्य एक समय घटित होगा, और उत्कृष्ट संख्यात समय, अब यहां वो आवली का असंख्यात भाग नहीं लिया, क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में लगातार जन्मने के समय कम हो गए तो संख्यात समय कहा, तथा वो भी उत्कृष्ट की बात की है, अनुत्कृष्ट के ज्यादा घटित होंगे, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल तो सर्वदा है, जन्मने वाले तो अलग बात है, यहां तो उनकी सत्ता वाले जीव लेनी है हमको, अनुत्कृष्ट में तो सत्ता वाले सभी लेना है, इसलिए सर्वकाल होता है। इसी प्रकार मनपर्य ज्ञानी क्या होगा, मनपर्य ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों का सत्वकाल कितना है, कम से कम एक समय, और लगातार कोई ना कोई जीव उसमें आता है तो उत्कृष्ट के साथ संख्यात समय। मनपर्य ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थिति कब होगी, उसके पहले समय में। संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परंतु इन सभी में अनुत्कृष्ट वाले तो हमेशा रहेंगे ही, यानी ये ऐसी कोई सांतर मार्गणा नहीं है, हमेशा ही मनपर्यज्ञानी हो गए, संयत हो गए, सामायिक वाले हो गए, परिहार विशुद्धि वाले भी हो गए, हर समय हो गए कहीं ना कहीं, परिहार विशुद्धि संयत और क्षायिक समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। क्षायिक समय दृष्टियों में उत्कृष्ट कब होगा, क्षायिक होने के पहले समय में, बाद में लगातार घटता चला जाएगा, तो लगा मैं क्षायिक की बात पूछती हूँ, परिहार विशुद्धि में उनका उत्पन्न होने का पहला समय घटित करना है। यानी ऐसे लगातार कोई ना कोई क्षायिक समय दृष्टि लगातार होता रहे तो संख्याति होगी ना, होने वाले जीव तो मनुष्य में होते हैं, वे ही संख्यात है, तो इनके भी संख्यात समय घटित होंगे। क्षायिक में चारों गति के जीव है, परंतु क्षायिक का पहला समय कहाँ घटित होगा? आप कहेंगे कृत्य वेदक से लेकर अन्य गतियों में भी हो सकता है, नहीं की बात नहीं है, परंतु पहला समय अभी मनुष्य में से मरकर अभी अभी गए ना, वो तो संख्याति हो गए। लगातार भी आगे जाएंगे तो संख्याति मनुष्य होंगे। अभी वहां जाके हम अधिक असंख्या जीव कैसे घटित करते हैं क्षायिक में? अभी नरक को पहले नरक में भी घटित करना है, तो सागर काल तक वो लगातार कोई ना कोई उसमें जाएंगे, लगातार ही ना, जब कभी मरकर जाएंगे तो वो असंख्यात घटित होते हैं। परंतु यह क्षायिक में उत्कृष्ट स्थिति कब होगी? क्षायिक होने के पहले समय में। बाद में उनका बंध तो हीन होता चला जाएगा और जितनी स्थिति है वो भी एक एक निशे गलते चले जाएगा। वैक्रिक मिश्र कायोगी जीवों में मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है? जघन्य एक समय। अभी वैक्रिक मिश्र एक कौन सी मार्गणा है? सांतर मार्गणा है, पहले यही समझना है। तो उसमें कोई ना कोई जीव आकर उत्पन्न होता है। जघन्य एक समय और उत्कृष्ट आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्वकाल अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त क्यों कहा? क्योंकि कोई जीव उसमें आता है तो वैक्रिक मिश्र का अंतर्मूर्त काल तक तो वहां रहेगा ही, इसलिए जघन्य सत्वकाल अंतर्मूर्त का। और उत्कृष्ट कल सत्वकाल पल्योपम का असंख्यातवा भाग प्रमाण है। देखो इन दो में कोई डिफरेंस ख्याल में आता है? जघन्य के लिए उत्कृष्ट आवली का असंख्यातवा भाग का और अनुत्कृष्ट के लिए पल्य का असंख्यातवा भाग का, ये क्यों? देखो ये ऐसा अनुत्कृष्ट की बात चल रही ना, इसलिए लेना, यानी वो ऐसी मार्गणा है। हमने देखा अंतर तो पड़ता है, परंतु हमें ऐसा लेना है कि लगातार कोई ना कोई जघन्य कब घटित होगा? पहले समय में नहीं, हम यहाँ उत्कृष्ट घटित कर रहे, उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले कब हो गए? पहले समय में। वैक्रिक मिश्र की अपेक्षा उत्कृष्ट लेना है, वैक्रिक कायोग वाले वहीं पर उत्कृष्ट बांधेंगे वो बात नहीं है। अब यहाँ वैक्रिक मिश्र में उत्कृष्ट किसके होगा? उत्कृष्ट किसको होगा? मैं स्वामी तो पूछ रही हूँ। मेरा प्रश्न ऐसा है, वैक्रिक मिश्र का योग में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला जीव कौन सा होगा? ये इनके तरफ देखना, ये हमेशा साइन लैंग्वेज चलती है। उत्कृष्ट स्थिति बांध कर मनुष्य या तीर्य जो नरकों में उत्पन्न होता है ऐसा जीव लेना है। वो कौन से नरक में उत्पन्न होता है उसकी बात नहीं है, उत्कृष्ट स्थिति बांध कर नरक में जा रहा है अभी दूसरे समय में, ख्याल है ना? क्योंकि इतनी स्थिति बांधने वाला देवों में तो नहीं जाएगा, इसलिए उसको नरक की बात की। हमने देखा है उत्कृष्ट स्थिति के साथ मरकर जीव तिर्यंश पंचेंद्रिय में जाता है संगी में, या मनुष्य में जाता है या नरक में जाता है। यह नरक में जाने वाले हमने वैक्रिक मिश्र लेना है हमको, इसलिए वो रुजुगति के बिना भी वैक्रिक मिश्र डायरेक्ट शुरू करेंगे हम तो वहां पर घटित होगा। तो ऐसे लगातार कोई ना कोई जीव वहां जघन्य वाले पैदा हो गए तो कितने काल तक हो सकते हैं? एक समय से लेकर आवली के असंख्यातवे भाग काल तक लगातार उत्कृष्ट 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 वहां आए। अब जघन्य वाला जो सत्वकाल बताया वहां अनुत्कृष्ट के लिए, बाकी सब उत्कृष्ट के अलावा बाकी सब कौन है? अनुत्कृष्ट है। और वैकृत कोई जीव वहां अनुत्कृष्ट के साथ आया है तो लगातार कितने काल तक वो अनुत्कृष्ट रहेगा? अंतर्मुर जो वैकृत मिश्र का काल है, वो अंतर्मूर्त पार करके आगे चला गया वैकृत का युग में, और तब तक दूसरा आया। पहले समय घटित करना है तो उसमें लिमिटेशन पड़ती है, ये अंतर्मूर्त तक रहता है तब तक दूसरा आए, तब तक दूसरा आए, तब तक दूसरा आए, ऐसा लगातार करेंगे तो कब तक हो सकता है? पल्ले के असंख्याते भाग काल तक। ख्याल में नाना जीवन की अपेक्षा कैसे घटित करना है? हमने जैसे सासाधन गुणस्थान को देखा था, एक जीव की अपेक्षा एक समय से लेकर आवली के है छह आवली, परंतु नाना जीवों की अपेक्षा हो सकता है एक समय, या अधिक से अधिक लगातार चले तो पल्ले का असंख्याते भाग काल तक। तो वहां एक समय घटित किया और यहां जगन्य अंतर्मूर्त घटित करते, ऐसा क्यों? हाँ, सासाधन का जगन्य काल अंतर्मूर्त हो सकता है, सॉरी एक समय हो सकता है, इसलिए वहां तो जगन्य नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य भी एक समय था। नहीं समझे? फिर से ये सासाधन के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, सासाधन गुणस्थान की बात चल रही है, अभी यहां उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात छोड़ दो। सासाधन में कोई ना कोई जीव है, ऐसे कब तक हो सकता है? नाना जीवों की अपेक्षा भी मैं बात करें तो कम से कम एक समय तक, और लगातार कोई ना कोई जीव वहां है, ऐसा कब तक होगा? पल्ले के असंख्यात विभाग तक नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव की अपेक्षा छह आवली काल है तो नाना जीवों की अपेक्षा कैसे होगा? कोई जीव छह आवली तक रहा और वो उसमें से मिथ्यात्व में जाने के पहले और कोई जीव सासाधन में आया, और कोई जीव आया, ऐसे लगातार चलता रहे तो पल्ले का असंख्यात विभाग। परंतु उस गुणस्थान का जगन्य काल एक समय होने के कारण एक समय घटित होता है। अब वहीं पर सम्यक मिथ्यात्व की बात करते हैं हम, अंतर की बात मत उठाओ अभी, उसका वो कारण अलग है। कंफ्यूजन लोगों का मत बढ़ाओ क्योंकि उनको कुछ ये बातें पता नहीं है, उसका अंतर अभी हम बाद में देखेंगे जब अंतर की बात आएगी। अब हम सम्यक मिथ्यात्व का काल देखते हैं नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव की अपेक्षा तीसरे गुणस्थान का काल कितना है? एक अंतर्मूर्त। तो कोई जीव तीसरे में आया तो कितने काल तक रहेगा? मिनिमम अंतर्मूर्त। सासाधन में मिनिमम कितना था? एक समय घटित हो सकता क्योंकि गुणस्थान का ही जगन्य काल एक समय था। अब यहां गुणस्थान का जगन्य काल अंतर्मूर्त है तो नाना जीवों की अपेक्षा अगर हम तीसरे गुणस्थान का काल देखेंगे तो जगन्य काल कितना होगा? एक अंतर्मूर्त, और लगातार कोई ना कोई जीव उसमें रहेगा तो पल्ले का असंख्यात होगा। ये जैसे है ना, वैसे ये उदाहरण हुआ। अभी सिद्धांत वैकृत मिश्र पर घटित करना है। वैकृत मिश्र का काल कितना है? एक अंतर्मूर्त। तो कोई जीव यहां वैकृत मिश्र में आया है तो उसका तो लगातार काल अंतर्मूर्त होगा ही होगा। तो नाना जीवों की जब अपेक्षा घटित करते हैं तो ऐसा होगा कोई एक या दो चार पांच एक साथ उत्पन्न हुए हैं और अंतर्मूर्त काल तक रहेंगे और बाद में कोई न हो, ऐसा हो सकता है। तो जगन्य काल कितना हुआ? एक अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक अंतर्मूर्त, जो उस मार्गणा का काल है। और उस मार्गणा का उत्कृष्ट काल कितना है? मार्गणा का पल्ले का असंख्याता भाग। अनुत्कृष्ट की बात चल रही, अब जग उसी में जगन्य की बात करेंगे। सॉरी, जगन्य ने हमको उत्कृष्ट के पहले देख रहे, उत्कृष्ट की देख रहे। उत्कृष्ट कब होता है? पहले समय में होता है। अन्य पर्याय में उत्कृष्ट स्थिति बांधकर आया हुआ जीव, अभी वो कितने उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं छोड़ देते, पहले समय में घटित होगा। तो यहाँ ऐसे लगातार पहला समय में, पहले समय में ऐसे एक जीव जन्मा या दो चार जन्मे, फिर जन्मे दूसरे समय में, फिर और तीसरे समय में, वो भी जगन्य के साथ होना चाहिए, उत्कृष्ट के साथ होना चाहिए। जगन्य उत्कृष्ट का घोटाला हो रहा है। तो ऐसा लगातार कितना हो सकता है? आवली का संख्या। समझ में आया ना, अनुत्कृष्ट के साथ लगातार रहेगा तो पल्ले का संख्या तो अभाव, और उत्कृष्ट के साथ लगातार कोई ना कोई जन्मा तो आवली का संख्या तो, क्योंकि उसका एक समय है, पहले ही समय में होता है और जरूरी नहीं कि सब जीव वो उत्कृष्ट के साथ आएंगे, मेजॉरिटी तो अनुत्कृष्ट के साथ जन्मेंगे। ख्याल में आए वैकिरेक मिश्र के बारे में? उस मार्गणा का काल अंतर्मूर्त है, इसलिए अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक अंतर्मूर्त और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल पल्ल का संख्या कवा। अब वैकिरेक मिश्र में उत्कृष्ट स्थिति वाले का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, नाना जीवों का उत्कृष्ट काल आवली का संख्या कवा। कोई ना कोई उसमें अन्य 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 जीव उसमें रहता आता रहे, ऐसा जीव लेना। देखो अब मनुष्यों में भी हमने ऐसा ही लिया था ना, अंतर्मूर्त लिया था। नहीं नहीं लब्धि अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट आवली का असंख्यात भाग लिया था, कोई ना कोई जीव उसमें जन्मे 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 इस तरह से लगातार। और फिर उस मार्गणा का काल खुदा भव है, तो उसके लिए उत्कृष्ट वाला और एक समय घटाओ तो अनुत्कृष्ट एक समय कम खुदा बहुग्रहण हुआ। यहां हम अनुत्कृष्ट का तो पूरा वैकिरिक मिश्र का काल लिया था, अंतर्मूर्त एक समय घटाएंगे तो भी अंतर्मूर्त ही होगा, इस तरह से ये लिया हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के कहना चाहिए। ये उपशम सम्यक दृष्टि में भी कोई आता है तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही रहेगा, ये भी सांतर मार्गणाएं हैं और अंतर्मूर्त वाली है। अभी हम सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो उदाहरण देख ही लिया था। अपगत वेदियों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का, अपगत वेदी है और उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति है, हाँ उपशम श्रेणी में होगा और कितनी सत्ता वाला होगा? 24 की वाला, क्योंकि 21 वाले के उसके कम होगी। जीवों का जघन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल संख्यात समय है। उत्कृष्ट स्थिति उसके उपशम श्रेणी के अपगत वेद है ना, अपगत वेद होने के पहले समय में होगी। तो लगातार कोई ना कोई जीव उपशम श्रेणी मानकर अपगत वेदी होगा, ऐसे संख्यात ये कम से कम होगा एक समय तक, और लगातार कोई ना कोई होगा तो संख्यात समय होगे, जीव ही वहां संख्यात है टोटल। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय, एक समय और उत्कृष्ट सत्व काल अंतर्मूर्त कहा। ये जघन्य सत्व काल एक समय कैसे होगा? अपगत वेदी में जघन्य सत्व काल एक समय, हाँ एक जीव आया अजघन्य के साथ और आते ही मरण हो गया, हाँ तो उसका अजघन्य के साथ एक समय प्राप्त होता है। और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ये उसका अपगत वेदी का काल कितना है? अंतर्मूर्त इसी प्रकार अकषायी सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। सूक्ष्म सांप्राय में भी वो उपशम श्रेणी वाला लेना है, यथाख्यात और अकषायी भी 11वें गुणस्थान वाले लेने। इसी प्रकार आहारक और आहारक मिश्र काय योगियों के जानना चाहिए, यानी आहारक यानी जब आहारक मिश्र काय योगी की बात चल रही है, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, उनके भी उत्कृष्ट कब होती है? तो पहले समय में होती है। परंतु आहारक मिश्र का योग में अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों का जघन्य सत्व काल अंतर्मूर्त है। भानुबेन ये ऐसा क्यों कहा? बाद में अनुत्कृष्ट, हम उत्कृष्ट की बात ही नहीं करते, अनुत्कृष्ट की कितना होगा काल, क्यों? हाँ आहारक मिश्र का काल अंतर्मूर्त, परंतु आहारक का योग में एक समय उन्होंने घटित किया था, जया बेन, मंजू बेन, हाँ मंजू बेन को आज चांस है, आज आई है ना बहुत दिन के बाद। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ लगातार कई एक समय वहाँ घटित किया और आहारक मिश्र में एक समय नहीं लिया, अंतर्मुहूर्त लिया। हाँ प्रेरणा बेन बता रहे, काल अंतर्मुहूर्त ठीक है, आहारक का योग का भी अंतर्मुहूर्त होगा क्या? आहारक मिश्र का योग में मरण नहीं है, आहार कायोग में एक समय घटित हो सकता है मरण की अपेक्षा, या जब पूर्णता होने को आई मनोवचन में से आहार कायोग में आया और फिर मूल शरीर में आया। आहार कायोग में एक समय घटित होता है, आहारक मिश्र में अंतर्मूर्त तो होगा ही, इसलिए वहां जघन्य अंतर्मूर्त लिया है, जघन्य सत्वकाल अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त ही लिया, क्योंकि करने वाले ही जीव संख्यात हो गए, तो संख्या जीव भले संख्यात समयों तक लगातार आए तो भी अंतर्मुहूर्त ही घटित होगा इस अपेक्षा से। सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों में देखो, हमने इसको दृष्टांत के तौर पर लिया था गुणस्थान का काल घटित करने के लिए, अब यहां उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट ले लेंगे। सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों में मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्वकाल एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, और उत्कृष्ट सत्वकाल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यानी लगातार कोई ना कोई जीव सासाधन होता जाए, हाँ और सासाधन में रहे तो उत्कृष्ट की बात है ना, तो पहले समय में उत्कृष्ट होते, एक समय में उत्कृष्ट होता है तो उसका जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट रहने का लगातार कोई ना कोई जीव सासाधन के पहले समय में आते गए उत्कृष्ट के साथ, तो अवली का असंख्यात भाग होगा। और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय और उत्कृष्ट सत्व काल पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। जैसे हमने सम्यक मिथ्यात्व में उपशम सम्यक्त्व में जघन्य काल जो अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त देखा था, आहारक मिश्र में भी अंतर्मूर्त देखा था, ऐसे यहाँ जघन्य सत्वकाल अनुत्कृष्ट का भी एक समय होता है, क्योंकि इस गुणस्थान का काल ही एक समय घटित हो सकता है, अन्यत्र उस मार्गणा का जघन्य काल ही अंतर्मूर्त था, उस मार्गणा का काल ही अंतर्मूर्त है, इसलिए वहां तो अंतर्मूर्त अनुत्कृष्ट का भी जघन्य अंतर्मूर्त लिया था। अब यहां क्या लेना है, अनुत्कृष्ट का जघन्य सत्व काल एक समय, क्योंकि सासाधन का एक समय हो सकता है, दूसरे समय में कोई जीव है ही नहीं वहां पर सासाधन में, ऐसा हो सकता है, और उत्कृष्ट सत्व का रहने लगातार कोई ना कोई सासाधन में है लगातार कितना होगा, पल्लक के असंख्यात भाग, आवली का जो देखा था वो उत्कृष्ट के लिए देखा था, अब यहां जब लगातार का काल देखते हैं तो सासाधन का मैक्सिमम एक जीव की अपेक्षा काल है छह आवली पूरी होने के पहले पहले कोई जीव आ गया, फिर दोबारा कोई आ गया, ऐसा लगातार होता रहे तो कब तक चलेगा, पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक। ये भले ध्यान में नहीं रहे पर समझ में आता है कि नहीं, हम पूछेंगे कितना है आपको शायद स्मरण नहीं हुआ, उसकी बात नहीं है, अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो क्यों उसका ऐसा कथन है ये बात समझ में आना जरूरी है, जब पढ़ते हैं तो उसका रीजनिंग ख्याल में आना चाहिए, कितनी बातें तो स्मरण में से निकल जाती है, हमें सभी बातें ख्याल में नहीं रहती है, इतना तो समझ में आया ना कि जैसे सम्यक मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त का अनुत्कृष्ट का जघन्य काल और सासाधन में अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय का, क्योंकि वो मार्गणा ही अंतर्मूर्त की है एक जीव की अपेक्षा, या उसका काल ही अंतर्मूर्त का है तीसरे गुणस्थान का, और यहाँ का जघन्य काल एक समय हो सकता है, इसलिए यहाँ एक समय भी अनुत्कृष्ट का घटित हो सकता है। नहीं 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 ज्यादा भी हो गए ना, क्योंकि छह आवली काल तक, उसमें छह आवली में निरंतर आने का काल तो आवली का संख्यात्व भाग काल तक निरंतर आते हैं, बाद में उसमें भी गैप पड़ेगा, ऐसा उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं निकाल सकते। आचार्यों के पास उसकी भी खूबी है कि कैसा निकालना है, तो उसके लिए वो लगातार आने के काल और नहीं आने के काल उसका लंबा चौड़ा गणित होगा। हाँ, अभी हम तो इसमें से सुलझे थोड़ा। हाँ, दूसरे प्रेरणा बहन कहते दूसरी बात है, दिमाग में मत डालो। विशेषार्थ नाना जीवों की बात है ना, ये महत्व की है। मुनि की उत्कृष्ट स्थिति का बंध कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक होता है। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, एक जीव की अपेक्षा हमने देखा था अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होता, परंतु उसका अंतर्मूर्त पूरा होने के पहले ही किसी अन्य जीव ने उत्कृष्ट स्थिति बांधी, उसका अंतर्मूर्त पहले होने के और किसी ने बांधी, भले एक हो गया जो चार हो गए, तो ऐसा लगातार चलता रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक होता है। एक जीव की अपेक्षा हमने अंतर्मूर्त देखा था, याद है, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति बांधने का लगातार काल, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त देखा था। यहां नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। जब नाना जीव कहेंगे तो मनुष्य, देव, नारकी और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच सभी लेना, तो उनमें से कोई ना कोई उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, ऐसे लगातार चलता है। तो हमने कहा यहां देखा है पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक, और मनुष्यों में लगातार मानता है, हमने देखा था कितना होगा उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त, क्योंकि संख्याति मनुष्य करेंगे लगातार तो भी अंतर्मूर्त होगा। अभी हम विशेषार्थ की दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग तक। इसके पश्चात एक भी जीव मोनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाला नहीं रहता, इसका अर्थ उसमें अंतर पड़ जाता है। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा मोनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा, ये ओघ की अपेक्षा हुआ, इन जनरल कथन हुआ है। उत्कृष्ट स्थिति यानी 70 कोड़ा कोड़ी वाली, और उसके बिना अन्य जो है वो अनुत्कृष्ट कहेंगे, तो उत्कृष्ट काल लगातार काल कितना हो सकता है नाना जीवन की अपेक्षा, अधिक से अधिक पल्ले का असंख्यात भाग। सामान्य नारकी आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें यह ओघ प्ररूपणा अविकल घटित होती है। सामान्य नारकियों में, क्योंकि वो स्वयं वो बंद करने वाले भी है, वहां तो घटित होगी, परंतु अभी हमने वैकरिक मिश्र में देखा तो वहां तो ऐसा घटित नहीं हुआ था, उसका कुछ अन्य काल था। जैसे यहां अलग बात बताई, उसकी बात अलग से बताई थी। ये ओघ प्ररूपणा क्या है? उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट पल्ले का असंख्यात भाग काल तक, अतः उनकी प्ररूपणा ओघ के समान कहा। उन मार्गणाओं के नाम मूल में गिनाए ही हैं। इनके अतिरिक्त ये अभी हम लिस्ट हमने देखी थी ना ओघ के साथ, जैसे नारकी देखे, सामान्य नारकी देखे, देव देखे, तीन मनुष्यों को छोड़ा था वहां पर, अन्य तीन गति वालों को लिया था, फिर वो मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी आदि आदि भव्य अभव्य सबको लिया था उसमें। तभी यहां कहते हैं इनके अतिरिक्त और जितनी मार्गणाएं हैं उनमें से 8 सांतर मार्गणाओं को तथा अपगत वेद, अकषाय और यथाख्यात संयत, इन तीन मार्गणाओं को छोड़कर शेष सब मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल सर्वदा है। देखो, सांतर मार्गणाओं में ही अंतर पड़ता है, इसलिए वहां तो सर्वकाल कहा, और जो अपगत वेद है, अकषाय है, यथाख्यात संयत है, वहां तो अंतर तो पड़ता ही, हो सकता है एक समय में ही जीव मरे, ऐसे भी हो सकता है, इसे इनकी बात स्पेशली अलग बताई है। तो शेष मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल सर्वदा है, क्योंकि इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतर काल नहीं पाया जाता। ये अंतर तो सांतर मार्गणाओं में घटित करके दिखाएंगे। तथा उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय है अन्य मार्गणाओं में, जैसे हमने ओग में देखा था, उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि इन मार्गणाओं में एक समय तक उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होकर दूसरे समय में उसका विरह संभव है। किसका विरह? उत्कृष्ट स्थिति का। हाँ, इनमें उत्कृष्ट काल भिन्न भिन्न प्रकार पाया जाता है, जिसका निर्देश मूल में किया ही है। फिर भी यहां उसके कारण का संक्षेप में विचार कर लेते हैं। अभी वो संक्षेप में विचार हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो।